राम श्री राम 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 सीता राम श्री राम 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 सीता
राम श्री राम 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 सीता
राम भवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः योऽस्योत्प्रेक्षकवादि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिता यं संपद्य जहत्यजा मनुषै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घनानंद कंद परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम कर संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर इस पावन क्षेत्र के प्रत्येक रज को प्रणाम कर यहाँ उपस्थित सभी आत्म कल्याणार्थी सज्जनों, माताओं, बहनों का, सभी का, प्रत्येक प्रत्येक का हार्दिक अभिनंदन कर संत महात्माओं के द्वारा चलाए हुए इस सत्संग धारा में जो कुछ अपने को मिल जाए उससे हम लोग बहुत ज्यादा लाभ ले रहे हैं, ऐसा सभी से करबद्ध निवेदन है। अभी मायरे के प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज की एक चौपाई पढ़ी गई कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। खूब गहराई से हम लोगों को विचार करना चाहिए। ये अभी अभी जो कुछ हमको दिख रहा है ये सर्वथा हमारे लिए अदृश्य होगा। एकदम अनजान पना होगा। यदि मर करके वापिस मनुष्य बन करके और ढालेगांव में आएंगे तो भी ऐसा लगेगा कि हम कौन से क्षेत्र में आए, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। इतना हमारा संसार में बिल्कुल कच्चा काम है, फिर भी हम लोग बेसुध होकर के, अंधे होकर के दौड़ रहे हैं। इससे बड़ा और क्या अज्ञान हो सकता है। शास्त्रों में अज्ञान की परिभाषा की है, वहां ज्ञान का अभाव नहीं बताया है। ऊंचे से ऊंचे ग्रंथों में ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं बताया, बल्कि जिसको हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं उसका नाम अज्ञान है। जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं, मन में आदर नहीं देते, उसका नाम अज्ञान है। ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो ये नहीं जानता हो कि यहां से हमको जाना पड़ेगा। कितना ही बड़ा, कितना ही बड़े से बड़ा मूर्ख हो, पागल की तो कोई बात ही नहीं है, मूर्ख की बात है। पागल की तो बुद्धि ठिकाने नहीं। वो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ये जानता है कि मरना तो पड़ेगा, एक दिन मरना पड़ेगा। तो उस मरना पड़ेगा, यूं ही मर जाए तो क्या लाभ हुआ भाई। उस मृत्यु पर गहरा विचार करना चाहिए कि मृत्यु के बाद हमारी क्या दशा होगी। महाराष्ट्र जी एक बात कहते थे कि मनुष्य यहां यहां का तो बहुत प्रबंध करता है, जीने का बड़ा प्रबंध करता है, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे कहां, हमारे पीढ़ी में क्या हो जाए, पीढ़ियों तक का इंतजाम करता है। लेकिन मरने के बाद का कुछ इंतजाम है? मरने के बाद हमारी बहुत खराब दशा होगी। हो जैसे आदमी मीठा लड्डू खाए उसमें जहर मिला हुआ हो तो खाते खाते समय तो अच्छा लगता है, मीठा है लड्डू, मीठा है, लेकिन बाद में उस जहर का परिणाम क्या होगा, वो आदमी मर जाएगा। ऐसे संसार में गृहस्थ में रहते हुए राग है, द्वेष है, मोह है, कामना है, इनके वशीभूत होकर के
संसार के भोग हम खा रहे हैं, ये भोग तो लगे लड्डू के समान, और विविध कामनाएं हैं, राग द्वेष मोह अहंकार, यह है जहर के समान। हम लोग इसको पुष्ट कर रहे हैं। ये जब तक हमारे अंदर से नहीं निकलेंगे, जहर नहीं निकलेगा, तब तक भाई हमारे जीवन का हमको आनंद मिलना तो दूर, शांति मिलना तो दूर, हमको भाई जीवन का वास्तविक प्रयोजन समझ में भी नहीं आएगा। केवल पशु की तरह हम लोगों का जीवन है, वो भी खादते मोदते नित्यम, सुनकर सूकर खरे, सब आराम से जी रहे हैं। हम भी पशु जीवन में जी रहे हैं, आराम के साधन जुटा लेना कोई मनुष्यता थोड़े ही है। अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयास से पशु भी आराम तो लेता ही है। एक ऐसा पक्षी है बैया पक्षी, जो ऐसा घोंसला बनाता है कि कितनी भयंकर बरसात आए उसके ऊपर से बरसात निकल जाए। इतना बढ़िया वो घर बनाता है कि हवा में कमी न रहे और बरसात का पानी न जाए। वो छोटे 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 तिनकों से ऐसा यूं गूंथ करके बनाता है तो हवा आती रहती है, और उसके अंदर वो खंड बनाता है जिसमें मादा है पक्षी, वहां अंडा देती है, आराम से वहां बैठी रहती मादा, अंडा देती है और खूब बहुत अच्छे ढंग से उनका पालन करते हैं, बढ़िया मकान। तो उसमें और हमारे में क्या अंतर होगा? हम लोग यहां वास्तव में कैसे आए? सत हरि भजन जगत सब सपना, जैसे रात्रि का स्वप्न है वो जगने के बाद नहीं रहता, ऐसे ही ये दृश्यमान जगत है, ये आंख बंद करने के बाद नहीं रहेगा। महाराज श्री बोलते थे कि मौत और नींद दोनों बहने हैं, बहने, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है। अभी देखो थोड़ी देर में अपन सब सो जाएंगे गहरी नींद में, उस समय किसी को गहरी नींद में पता ही नहीं है कि हम ढालेगांव में हैं क्या, हम कहां हैं, क्या करते हैं, हमारा क्या व्यवसाय है, कुछ पता नहीं रहेगा। और गहरी नींद के बिना किसी का काम भी नहीं चलता। गहरी नींद तो बहुत जरूरी है। ऐसे ही भाई मर जाएंगे, यूं ही मरने के बाद हमारी हमारे कर्मों से कितना बड़ा भारी हमको लेखा जोखा देना पड़ेगा, ये बात आज विचार करने की है, जीते जी विचार करने की है। कितना अच्छा भाव रख करके यहां चोखले भर के आप लोग सज्जन लोग मिलकर के ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इसका प्रभाव केवल यहीं तक नहीं है कि अपने आए और चले गए, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, सारे प्रकृति में प्रभाव पड़ता है। कितनी पवित्र संस्था है ये, किसी से कोई याचना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, सबका सहयोग, सब जैसा करे वैसा करे, कोई चंदा नहीं, कोई चिट्ठा नहीं, कोई याचना नहीं। कारण क्या है कि यहां इस संस्था के मूल बीज में एक बात रही, कि भगवत भावों का प्रचार हो, लोग आवे और सत्संग में लगे और भगवान की तरफ चले और लोगों को शांति मिले। अच्छे अच्छे संतों का, महापुरुषों का भाव बना इस संस्था में। कोई बहुत बड़े सेठों से, साहूकारों से, पैसे वालों से संस्था नहीं चलती। संस्था आप जैसे उदार मना सज्जन व्यक्तियों से। माने उदारता का अर्थ है कि अपना जीवन का समय यहां लगाते हैं आप, ये उदारता है। अर्थ की दृष्टि से उदारता की बात नहीं बोलते। अपना व्यस्त समय, दो धन के लिए आप समय लगाते हैं, गृहस्थ में रहने के लिए समय लगाते हैं, उस समय को छोड़ करके उस गृहस्थ को और उस आराम को, गृहस्थ में घर में जितना आराम होता है उतना आराम कहीं नहीं होता, उस सब को छोड़ करके यहाँ ठंड है तो ठिठुरन भी आपको सहनी पड़ती है, कभी गर्मी भी पड़े, कभी ओला पड़े, कभी बरसात पड़े, कितना सहन करके आप ये कार्यक्रम निभा रहे हैं, ये आपकी उदारता है। उदारता इस दृष्टि से कहते हैं आप उदार मना हो। कितना अच्छा ये भाव है। ये कार्यक्रम देखो, आप हम सभी चले जाएंगे, कितने सत्संगी थे चले गए, अच्छे अच्छे महापुरुष थे उनका भी शरीर चला गया। इस संस्था को बड़े उन ऊंचे रूप से देखने वाले पुरुष थे वो भी चले गए, पर ये कार्यक्रम चल रहा है, ये मामूली बात नहीं है, ये सतत चलना चाहिए। ये सतत बढ़िया ढंग से कैसे चलेगा कि यहां हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे उससे ये कार्यक्रम अच्छा चलेगा। हमको यहां ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक लाभ लेना चाहिए। ये संस्था है इसीलिए। कहीं पर भी किसी प्रकार से संस्था के जो संभालने वाले, काम करने वाले हैं, अच्छे अच्छे सज्जन लोग, उनसे मिलने का काम पड़ता है, किसी के मन में किंचन मात्र भी ये भावना ही नहीं है कि हमको कोई धन देवे, हमको कोई पैसा देवे तो संस्था कैसे चलेगी, किसी के भी मन में नहीं। बिना पैसे संस्था कैसे चलती है साहब, ये देखो, आओ ढालेगांव के गीता भवन के सत्संग को देखो कि साहब ये पैसा लगता है ना, समझते नहीं, कुतर्क है ये, इसका नाम कुतर्क है। लोगों के सद्भाव से काम चलता है कि पैसे से चलता है? जब पैसा हो जाएगा, पैसा मांगेंगे, चंदा चिट्ठा करेंगे और धनियों को यहां पर बहुत महत्ता दी जाएगी, संस्था डूब जाएगी, ऐसी बात महापुरुषों की कही हुई है। ऐसे महापुरुषों की जिनका जीवन में पैसे से कोई संबंध नहीं, उन महापुरुषों के ये विचार है कि जहां पैसे का प्रभाव हुआ वहां पर वो सब चीज डूब जाएगी। अपने इस यहां कोई किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई चिट्ठा नहीं, कोई कार्यक्रम में मांगना नहीं, कोई प्रसिद्ध नहीं आपको कि साहब आप हमको देओ इसलिए हम देते हैं, ये नहीं है। अब आप सब लोग मिलकर के जो करते हैं उसका तो विधिवत सब कुछ काम करना ही चाहिए। ये कारण क्या है? कारण एक ही है कि आपके इस संस्था के जो बीज में बात यह है कि लोगों का कल्याण कैसे हो, हम लोग भगवान की तरफ कैसे चले, हमारे जीवन का स्वभाव का सुधार कैसे हो, इस मानव शरीर के रहते रहते हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। गृहस्थ में रहते हुए, सब काम धंधा करते हुए हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी शिक्षा भाई हमारे दार्शनिकों में से सबसे बड़े दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण हैं, और सबसे छोटा दार्शनिक ग्रंथ गीता है, और सबसे विलक्षण बात गीताओं में कही है, सबसे छोटा दर्शन ग्रंथ एक गीता, आकृति में छोटा है और भाव में इतना गंभीर है कि उसकी टीका करने वाले लोग इतने मोटे मोटे पुस्तकें हो गई। संस्कृत की टीकाएं देख लो, हिंदी की टीकाएं देख लो, मोटी हैं, भाव बहुत छिपा हुआ। एक गीता का आश्रय लिया जाए और ज्यादा अपने को प्रपंच की जरूरत नहीं है, सब बात गीता में आ जाती है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। संसार में खूब बढ़िया काम करो, कुरियात विद्वांस तथा सक्त है। जैसे आसक्ति वाला पुरुष संसार में रात दिन लगा रहता है धन के उपार्जन में, ऐसे अनासक्त होकर काम में लगो। क्यों लगे? इसलिए लगो कि काम करने की सामग्री हमारे पास है, इसका सदुपयोग होगा। हम लोग संसार में कुछ लेने के लिए लगते हैं कि धन मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। संत महात्मा डरते थे वो प्रतिष्ठा से। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, संतों ने कहा है कि कंचन तजबो सहज है, सहज तिया को ने मान बढ़ाई ई रखो दुर्लभ तजबोए। हमारे संतों ने भी बताया झीणी माया, एक तो है मोटी माया, एक झीणी माया। स्त्री का त्याग सुगम है, सोने का त्याग, पदार्थों का त्याग सुगम है, लेकिन भाई प्रतिष्ठा का त्याग बड़ा मुश्किल है। अपने अपने मन को टटोल के हम देखें तो भाई बहुत पोल मिलेगी अपने जीवन में। अभी तीन चार दिन पहले, चार पांच दिन हो गए होंगे, एक संत का लेख पढ़ा, उसमें एक बात ऐसी विचित्र आई, बहुत बढ़िया बात लगी। बताया कि आप लोगों के बीच में बैठते हो, लोगों के बीच में बैठ करके सत्संग की बात, भजन की बात करते हो, कोई भी मिलेंगे आपस में अच्छी बात करेंगे, लेकिन आप एकांत में रहते हो उस समय आपके क्या भाव रहते हैं? लोगों के बीच में बैठ करके बात करना अलग चीज है, लेकिन एकांत में क्या भाव पैदा होते हैं? क्या कर रहे हैं, ये करें, वो करें, ये मिले, वो मिले, क्या भाव पैदा होते हैं? वो जो एकांतिक भाव होता है वो है साधना। उस दृष्टि से अपने जीवन को देखना चाहिए। तो ये यहां अपने लोग आते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तो बाहर से तो ये त्याग हुआ ही है, लेकिन अब घर में हम जाए तो जैसे घर को छोड़ करके यहां आए, ऐसे यहां भी कई प्रकार की बुराइयां छोड़ के हम जाए। हर बार गीता भवन के, ढाले गांव के, सत्संग के कार्यक्रम के पश्चात ऐसा होना चाहिए जैसे कोई गंगा जी में स्नान करने के बाद अपने को क्या अनुभव में लाता है, वैसे ही ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने में कुछ नया परिवर्तन लाना चाहिए। पूछा, सठ सुधरई सत संगति पाई, कोई ऐसे दुष्ट हैं क्या जो संसार में जो है सत्संग के द्वारा सुधरे हो? कोई एक बताएं, दो बताएं क्या? ये तो है ही नहीं। कितने कितने आदमियों का सुधार होता है सत्संग में, कह नहीं सकते। दूसरी जगह क्यों जाएं भाई, अपने खुद के ही देखें कि सत्संग से पहले हमारे मन में क्या भाव रहते थे और सत्संग के बाद, माने सत्संग मिलने के बाद हमारे मन में क्या भाव बदले। हमारे जीवन में जो शठता है, दुष्टता है, जो हमारे जीवन की बुराइयां हैं, वो सत्संग के द्वारा दिखती तो है, ये बुराई है, पहले दिखती नहीं थी। बहुत बड़ा लाभ, देखो और किसी चीज में लाभ होता है कि नहीं होता है, पर सत्संग से जरूर लाभ होता है। लाभ नहीं होता तो लोग आशा कैसे करते कि आप इतने दिनों के सत्संग करते हो, आपको लाभ तो कुछ नहीं हुआ, ये कहते हैं लोग कि लाभ नहीं हुआ साहब, क्या बताएं। इसका मतलब है कि लाभ होता है सत्संग से, ये धारणा तो आपकी जची गई ना, नहीं तो आपने आशा ही क्यों बनाई। सत्संग से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। जन्म जन्मांतर, देखो सेठ जी से किसी ने पूछा, सेठ जी माने जयदयाल जी गोविंद का, तो जयदयाल जी गोविंद का जी से किसी ने पूछा कि कोई चमत्कार बताओ, कोई ऐसी विशेष बात बताओ सत्संग की, चमत्कार बताओ। तो सेठ जी ने कहा कि सत्संग अपने आप में एक चमत्कार ही है। कि चमत्कार कैसे है, तो उन्होंने कहा कि हजारों जन्मों की जो भूल होती है वो सत्संग में हमको सुनने मात्र से मालूम देने लगती है कि भूल है हमारी। अपने इतने सत्संगी हैं, अपने सत्संगियों के अंदर ये भावना नहीं है कि भाई धन बहुत बड़ी चीज है, कि प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है, और काम बड़ी अच्छी चीज है, क्रोध अच्छी चीज है, लोभ अच्छी चीज है, अहंकार अच्छी चीज है, चाहे अपना छूटा नहीं हो भले ही, पर ये चीज अच्छी है, ये बात अपने लोगों के अंदर जचती नहीं है। और जो सत्संग नहीं करते हैं उनके पास जाओ, वो सीधा ही बोलेंगे आदमी का यदि गौरव नहीं है तो आदमी किस बात का। यदि आदमी के अंदर अपना बड़प्पन नहीं है तो आदमी किस काम का। आदमी की प्रतिष्ठा नहीं है तो वो आदमी का जीना ही व्यर्थ है। यदि आदमी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो उसमें और पत्थर में क्या अंतर है। और आदमी को यदि क्रोध नहीं आया किसी सच्ची बात को लेकर, वो नहीं बोला और ऐसा नहीं किया और वैसा नहीं किया, कोई हमको कह के देखो क्यों सुन ले हम किसी की, हमको इतने गिरे हुए हैं क्या, तो उनको काम भी अच्छा लगता है, क्रोध भी अच्छा लगता है, लोभ भी अच्छा लगता है, अहंकार भी अच्छा लगता है, धन अच्छा लगता है, प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, अहंकार अच्छा लगता है। कम से कम, कम से कम सत्संग करने वाला यदि विवश है, अपने विकारों से छूटा नहीं है, परंतु उसको ये चीजें बुरी तो लगती है ना, वो बेचारा अंदर से खिन्न है, क्या बताऊं इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, अहंकार खत्म नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं की इच्छा खत्म नहीं हुई, भीतर में एक अहंकार का बिना मतलब का ये भाव ये नष्ट नहीं हो रहा है, क्या करें, उसके मन में एक तकलीफ है, पीड़ा है, ये पीड़ा बहुत अच्छी है। एक संत के पास में गए, किसी ने कहा कि महाराज क्या बताएं, हमसे ये काम क्रोध लोभ वगैरह नहीं छूटते हैं, तो संतों ने एक ही बात दोबारा पूछी कि आपको पीड़ा कितनी है इनकी, और क्या बताएं भाई, सबसे बड़ी बात इस देश के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति वही थे हमारे इस देश के, पहले ही पहले स्वतंत्र भारत के। वो अपने वहां पर शरणानंद जी महाराज को बुलाया करते थे। शरणानंद जी महाराज से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए कि हम लोग चाहते हैं कि हम निर्विकार हों, लेकिन निर्विकार हो नहीं पाते हैं, इसमें क्या क्या कमी है। तो शरणानंद जी महाराज ने उत्तर दिया कि आप निर्विकार होना चाहते हो और हो नहीं पा रहे हो, इसकी वेदना कितनी है, वेदना तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी, फिर आप सब वो बाबूजी बोलते हैं उनको, तो बाबूजी आप निर्विकार नहीं हो सकोगे, बिल्कुल स्पष्ट साफ कहने वाले संत थे वो, कोई हो बोले आप निर्विकार हो नहीं सकेंगे। क्यों? निर्विकार होने की इच्छा है और निर्विकार हो नहीं पा रहे और आपको पीड़ा ही नहीं है, तो निर्विकार की इच्छा कहाँ है? किसी धनी आदमी, किसी धन की इच्छा वाले व्यक्ति को धन नहीं मिले तो उसके मन में कितनी तकलीफ है, टेंशन हो जाता है, टेंशन क्या हो गया साहब, क्या बताएं, इसके पहले बहुत धन था, धन चला गया और इनके धन की बड़ी इच्छा है, टेंशन पैदा हो गया, रात दिन मुंह उदास रहता है उसका, चेहरा काला पड़ जाता है, ऊट पटांग बातें करता है। क्यों? क्योंकि धन की इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, उसकी पीड़ा है उसको, वो पीड़ित है। ऐसे हम निर्विकार होने की इच्छा रखते हैं लेकिन नहीं हो पाते, तो इसकी पीड़ा कितनी है, पीड़ा उसकी पीड़ा नहीं है तो कोई काम की बात नहीं। हमारे निर्विकार होने की इच्छा नहीं है तो ये कांटा है, निर्विकार होना चाहते हैं ये बात तो हम बोलते हैं, अंदर पीड़ा कहां है? वो पीड़ा भी सत्संग में पैदा होती है और पीड़ा को दूर करने का उपाय भी सत्संग में मिलता है। देखो, परमात्मा की प्राप्ति की बात जितनी सत्संग में सुगमता से हमको साधन में मिलेगी, उतना किसी उपाय से नहीं मिलेगी। कितनी बढ़िया बात है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान और पार्वती जी, ये दोनों बात है, ये क्या, ये गृहस्थी थे दोनों ही। आप शंकर पार्वती का कहीं भी संवाद देखो, या तो भगवान के चरित्र बात करेंगे आपस में या सत्संग की बात करेंगे। भगवान शंकर सबको ये बताना चाहते हैं कि गृहस्थ में सत्संग मुख्य, ये करो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे उमे मैं अपना अनुभव कहता हूं, दूसरे की सुनी बात नहीं, दूसरे के अनुभव को मैंने देख करके नहीं कहा है, अपने अनुभव की बात है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान को हम लोग याद करें। अथ केना प्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत, किसी भी उपाय से हमको भगवान में लग जाना चाहिए। भगवान, देखो भगवान जो काम करते हैं वो सीमित करते हैं, और भगवान के भक्त लोग जो काम करते हैं वो असीम काम करते हैं। भगवान हमको देखो भारतवर्ष जैसा देश दे दिए, सनातन धर्म जैसा अपने को धर्म मिल गया, अच्छा वातावरण दे दिया, मानव शरीर दे दिया, सब दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, विवेक दे दिया सबको, परंतु सत्संग का काम है ये महापुरुष ही देते हैं। अच्छे अच्छे संत महापुरुष, वो यदि संसार में नहीं होते तो भाई ये सत्संग की धारा कैसे चलती? यहां देखो सबसे बड़ी बात, यहां दूसरा किसी का कोई काम है ही नहीं, सब काम छोड़ के आते हैं। आप में से बहुत से ऐसे आदमी हैं कि जिनके बहुत जरूरी व्यापार के कोर के कई काम रहते हैं उन सबको आप छोड़ करके और प्रतीक्षा करते हैं कि ढालेगा आए तो जाए। बहुत से लोग तो इन दिनों में कोई शादी विवाह भी होता हो तो वो जहां तक होते वो टालने की कोशिश करते हैं कि इस मौके को तो हम ले भी ले और शादी विवाह का काम तो बाद में कर ले। कोई गले में आफत आ ही जाए तो बात अलग है, बाकी यहां आप लोग सत्संग ही करने के लिए करते हो। कितना ऊंचा विचार है आपका, ये विचार किसने भरा? ये बहुत अच्छे संत महापुरुषों की कृपा का प्रभाव है भाई। आपका और हमारा ये कहां ऐसा सौभाग्य है, कितनी कितनी दूर से आप लोग आते हो और कितना आप लोग यहां पर तपोमय जीवन व्यतीत करते हो और कितनी पहले से यहां व्यवस्था की जाती है, कितने शालीनता से एक साथ रहते हैं। परिवार में दो चार आदमी आराम से नहीं रह सकते, हजारों आदमी यहां। आज तो पहले दिन में इतने आदमी आए, ये अंतिम दिन की उपस्थितियां होती थी, ये उपस्थितियां अंतिम दिन देखते थे हम लोग। पहले दिन में इतनी अच्छी उपस्थिति, बड़े शांत से, बड़े प्रेम से। लोग कहते हैं सत्संग से क्या प्रभाव पड़ता है, आके देखो भाई, देखो क्या प्रभाव पड़ता है। बस यही चाहते हैं कि ऐसा ही प्रेम अपने घर में रहे, ऐसा ही वातावरण अपने घर में रहेगा, बड़ा आनंद, बड़ा बड़ी शांति, बड़ा संतोष, बड़ा अच्छा रहेगा। देखो यहां आपके सामने कुछ प्रतिकूलता भी आती हो, निसर्ग की प्रतिकूलता आ जाए, और कोई आ जाए, आप यही समझते हो क्या है, थोड़े दिन की बात है। ऐसे घर में रहना जाए क्या है, थोड़े दिन की बात है। लोमस ऋषि थे महाराज जी, कथा बहुत बताते थे। लोमस ऋषि थे जिनके शरीर पर बहुत बाल थे, खूब बाल थे, नाम ही उनका लोमस। लोमस माने लोम बोलते हैं रोम को, रोम केश, खूब केश थे उनके। बैठे थे बेचारे जंगल में, भयंकर धूप लगी तो घास फूस इकट्ठा कर लिया, यूं पूड़ा बनाया, जिसको पूड़ा बोलते, ज्वारी का पूड़ा हो, गेहूं का पूड़ा हो, बाजरी का पूड़ा हो, इतना बड़ा करके और वो यूं ले यूं बैठ गए, क्योंकि सूरज की सबसे ज्यादा गर्मी सारे शरीर में से यहां लगती है। यदि माथे को यदि ठीक ढंग से ललाट को ढक लो ना और बाकी शरीर खुला भी रहे तो इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी यहां लगती है, तो वो यहां उन्होंने छाया कर ली। थोड़ी देर में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए उनसे ज्ञान लेने के लिए, कहा कि हे लोमस ऋषि जी, आप तो कोई घास फूस की कुटिया में नहीं रहते हो, यूं पूड़ा लेके बैठे हो, क्या है कि गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है, कम से कम कुटिया तो बना लो घास की। हे, थोड़े दिन का जीना है, थोड़ी सी जिंदगी, कौन बनाए घास फूस की कुटिया? उन्होंने देखा थोड़े दिन की जिंदगी माने घंटा दो घंटा दो चार दिन की कोई जिंदगी होगी, तो कहा महाराज थोड़े दिन की कितनी है? कि देखो ये ब्रह्मा जी मरते हैं ना, तब हम एक केश यहां से उतार देते हैं। कोई बड़ा आदमी मरे तो भाई केश उतारना चाहिए, मां मर जाए, बाप मर जाए, दादा मर जाए, दादी मर जाए, तो भाई केश उतारते हैं, अपनी रीति है। वो कहते हैं कि एक ब्रह्मा मरता है तो मैं एक केश उतारता हूं, सारा मुंडन एक केश। क्यों? ये तो ब्रह्मा जी तो मरते ही रहते हैं। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 1000 चतुर्युगी का दिन, 1000 चतुर्युगी की रात, माने 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आएंगे। चारों युग एक एक हजार बार आएंगे। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी के 100 बरस जब होंगे तब एक ब्रह्मा मरेगा तो एक केस उतारता हूं, और ये इतने से केस अभी उड़े हमारे इतने माथे में, अठन्नी भर जितने, अठन्नी रख के देख लो। अब ये पूरे केस उतर जाएंगे तब हमारी आयु पूरी हो जाएगी। अब थोड़े जिंदगी के लिए बताओ कौन बढ़ाए कुटिया थोड़ी सी जिंदगी के लिए। ऐसे थोड़ी सी जिंदगी देखो उनकी तो कितनी लंबी जिंदगी को थोड़ा माना, और लघु संबत पंचदशा खुद रामायण में आ जाएंगे। आजकल की उम्र कितनी है भाई, आजकल के जीवन में औसत आयु 60 वर्ष हो गई, 60 वर्ष। तो 50 वर्ष की उम्र के बाद तो घर वालों को चाहिए, जिनके 50 वर्ष की उम्र आ गई वो कहे बेटा अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, अपने हाथ में माला लेकर के भजन करो, अब कोई व्यापार देखना नहीं, कुछ करना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम खराब करो तो तुम जानो और बढ़िया करो तुम जानो। हम तो भाई 50 वर्ष पार कर गए, भजन में लगना चाहिए। सेठ जी ने कहा, ये सेठ जी ने कहा, सेठ जी ने तो और भी कम कहा है, 50 वर्ष की जब तक झाई पड़ने लगे 45, 47, 48, लेकिन अपने तो कहे 60 वर्ष के बाद यदि कोई जी रहा है उसको यही सोचना चाहिए कि मैं तो फोकट में जी रहा हूं और अब तो केवल भगवान के लिए ही जी रहा हूं। बड़ा अचंभा होता है 70-75 वर्ष के आदमी दुकान पर बैठते हैं, हिसाब किताब करते हैं, लेन देन की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, बड़ा अचंभा लगता है, बहुत अचंभा है, महापुरुषों को अचंभा होता है। अरे 70-75 वर्ष हो रहे हैं भाई, कहां तो हमारी ये परंपराएं थी कि भाई वानप्रस्थी जीवन हो सन्यासी जीवन हो, और काम ज्यादा से ज्यादा जिमी प्रति लाभ लोभ अधिक आई, कम करो संसार की प्रवृत्तियों को, कम करो, दुख ज्यादा बढ़ेगा, धन ज्यादा नहीं होगा दुख ज्यादा हो जाएगा। धन की शोभा कितनी है, बस कमा लिया खर्च लिया अच्छा काम में लगा दिया, बस उतना ही धन का स्वरूप ठीक लगता है। ज्यादा धन इकट्ठा ज्यादा कमाना ये दुख पाना और कुछ नहीं है, ऐसा संतों का कहा हुआ है। धन तो आया और खर्च हो गया बस, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और कुपूत कपूत तो क्यों धन संचय। धन को है खूब आराम से खर्चो करो, बढ़िया काम में लगाओ कमाओ खर्च करो, लेकिन यदि पीछे सपूत है तो भी इकट्ठा करने की भावना क्यों रखो। सपूत है वो अपने आप कमाएंगे खाएंगे, और कपूत है तो उड़ाएंगे बिना मतलब, आप तो दुख पाओ और कपूत है वो मौज करेंगे, क्या फायदा। इतनी ज्यादा अपने को संसार की प्रवृत्तियों में फंसना नहीं चाहिए, क्यों कि सत हरि भजन जगत सब सपना, सपना है भाई, सपना झूठा हो जाएगा। इसलिए अपने लोग यहां आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वातावरण ही यहां एक ही है। अब तो यहां भी झाई पड़ गई कलियुग की, तो 5-10 वर्ष पहले तो कोई टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था, अखबार भी नहीं था, समय नहीं था लोगों के, थोड़ी बहुत चाय की दुकानें थी जरूर बस, और कोई किसी प्रकार की कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं, तो भी थोड़ा है कोई बात नहीं। आप लोग बहुत उदार हो, उदार बताया फिर आपको कि उदार क्यों है, कितना आराम छोड़ करके रह पा रहे हो, घास फूस की कुटिया में रह रहे हो। यहां जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, सज्जन हैं, वो आप लोग जिस ढंग से रह रहे हो, आपको तो है प्रसन्नता और तसल्ली, उनके मन में वेदना कि कहीं थोड़ा सा भी निसर्ग में कुछ गड़बड़ी हो गई, ओड़े वगैरह आ गए तो हमारे अपने ही भाई बंधु माताएं बहनें बड़ी कष्ट पाएंगे। विचार आता है हरदम, आसमान को देखते ही रहते हैं क्योंकि तकलीफ पाए हुए है ना। हम तो खुद ही चार पांच बार आज थोड़ा थोड़ा वो बदल आया, देखा कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो आपका इतना बढ़िया पवित्र ये वानप्रस्थ जीवन है, भागवत में आया है, सुनाई है आपने कि वानप्रस्थ जीवन कुछ दिनों के लिए व्यतीत करना चाहिए। यह भी लिखा है कि बहुत बड़ा कष्ट भी नहीं पाना चाहिए, जानबूझ करके कष्ट नहीं पाना चाहिए, पर वानप्रस्थ जीवन है तो है। खूब बढ़िया प्रेम से उत्साह से आप लोग सत्संग सुने, राम कथा सुने, रामायण का पाठ सुने, और जो कार्यक्रम है सब कार्यक्रमों को आप बड़े उत्साह से करें। और सबसे बढ़िया बात तो देखो, अपने पास में महाराज जी के प्रवचनों की कैसेट्स हैं। अब महाराज जी तो नहीं है, लेकिन महाराज जी के कारण, महाराज जी जिस कारण से महाराज जी थे ना, वो महाराज जी की वाणी तो सुरक्षित होगी तो हो ही गई। कितनी बढ़िया आज बात बताई, चमकने वाली बात थी। ऐसे एक एक कैसेट में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। देखो महाराज जी के रहते हुए उन बातों को इतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे, और महाराज जी के बाद ये बातें विशेषता से अपने को स्वीकार करनी चाहिए। उनका जीवन तो भाई लोगों के कल्याण के लिए था, और कोई मतलब नहीं था उनके लिए। महाराज जी को बोलते कि आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कार्यक्रम मत दे, तो कहते मेरे को तो पहले ही मार दिया आपने, जीते जी मार दिया। यदि मैं लोगों को सत्संग की बात नहीं सुना सकूं तो मेरा जीना किस काम का बताओ, ऐसा बोलते थे महाराज जी। तो भाई अपने लोगों के लिए महाराज जी का स्वास्थ्य था, अपने लोगों के लिए महाराज जी का जीवन था। तो अपने को चाहिए कि महाराज जी की जो भावना थी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पारमार्थिक उन्नति करें, तो भाई महाराज जी की आज भी हम लोग बहुत बड़ी सेवा कर देंगे। शरीर नहीं है परंतु सेवा महाराज जी की हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। जय सीताराम 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 जय
हम जय सीताराम 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 जय सीताराम
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 सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी वाले
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय।